आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
तीस दिसंबर है आज, शुक्रवार का दिन, साल के आखिरी दिन भर में आपका स्वागत। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आज के पॉडकास्ट में किन बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं जानते हैं। पश्चिम बंगाल में आज कैबिनेट मंत्रियों और कई राज्य के मुख्यमंत्रियों का जमघट लगा। होना तो प्रधानमंत्री मोदी को भी वहां था, लेकिन उनकी मां का निधन हो गया और वो जा नहीं पाए।
आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूँ।
लेकिन इस सरकारी प्रोग्राम में थोड़ा विवाद भी हो गया। ममता बनर्जी ने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। वजह क्या रही या ये कोई संदेश था? उधर शुक्रवार की सुबह जब हमारी आपकी आंखें खुली तो एक साथ तीन बुरी खबरें सुनने को मिली। फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले महान पेले नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का निधन हो गया और इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो इस ब्लैक फ्राइडे पर एक रिपोर्ट सुनेंगे। इसी बहाने ये भी जानेंगे कि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं कितनी बढ़ गईं, क्यों बढ़ गईं, क्योंकि सड़कें बेहतर होने के बाद भी ये लगातार होती जा रही हैं, पिछले साल से ज्यादा है। और इस दुनिया को चलाने वाले टेक और साइंस की फील्ड में इस साल क्या अद्भुत घटा, हमारे आपके काम की चीजें क्या हुई ये पता करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से।
शुक्रिया नितिन। पश्चिम बंगाल को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बीसीसीआई ने कहा ऋषभ पंत की हालत स्थिर, सुबह कार एक्सीडेंट में आई थी गंभीर चोटें। 7 जनवरी को झारखंड का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन के काम पर लगाई रोक, बढ़ते प्रदूषण को लेकर किया फैसला। कफ सिरप से हुई मौत के मामले में WHO की पहल, उज्बेकिस्तान से साधा संपर्क। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज आएंगे दिल्ली, कल प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। बिहार के पटना में यात्रियों से भरी नाव डूबी, 7 लोग लापता। म्यांमार में आंग सान सू की पर मिलिट्री कोर्ट का फैसला, सुनाई गई 7 साल की सजा। पंजाब सरकार ने किया ऐलान, जाति के नाम पर रखे गए 56 स्कूलों के नाम बदलेंगे। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने लिया फैसला, पुरानी पेंशन योजना की होगी शुरुआत। और अफगानिस्तान में अब मीडिया में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध, तालिबान ने जारी किया फरमान।
यह दिन भर और मैं हूं नितिन ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। ये ट्रेन हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर चलेगी। कार्यक्रम का आयोजन हावड़ा स्टेशन पर रखा गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इसके अलावा पीएम मोदी को भी इस प्रोग्राम में होना था, लेकिन उनकी मां हीराबेन का आज सुबह निधन हो गया था और इसी के चलते वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ पाए। मुख्यमंत्री बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए सांत्वना प्रकट करते हुए कहा कि आपकी माँ हमारी माँ है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको यह दुख सहने की शक्ति दे।
Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your walk with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor and you pay respect through your activities to your mother.
इसके बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही राज्य में 7800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। वो कोलकाता में बुलाए गए राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक में भी वर्चुअली शामिल हुए, लेकिन इस दौरान हावड़ा रेलवे स्टेशन पर जो कार्यक्रम था उसमें विवाद हो गया। इसके चलते ममता बनर्जी काफी नाराज दिखाई दी, उन्होंने मंच पर आने से भी इनकार कर दिया। आज तक रेडियो रिपोर्टर सूर्याग्नि रॉय इसे कवर कर रहे थे, वहीं मौजूद थे। हमने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली वहां हुआ क्या था और इस पर बीजेपी का रिएक्शन क्या रहा।
देखिए, जो घटना घटी आज, वहां पे ममता बनर्जी इनवाइटेड थी प्रधानमंत्री के साथ। जैसे ही ममता बनर्जी वहां पे पहुंची, रेलवे मंत्री भी थे वहां पर, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और सपोर्टर्स थे जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे, और वीवीआईपी जो थे वो उनके ऑपोजिट वाले प्लेटफॉर्म पे थे, उनको ममता बनर्जी को देख के ही जय श्री राम, नरेंद्र मोदी के नारे, बीजेपी के नारे, बीजेपी जिंदाबाद, ये सब चलना शुरू हो गया था जब ममता बनर्जी अंदर आई। और जैसे ही वो हुआ तो हम सब थे वहां पे प्रेजेंट और हमने देखा कि वो विजिबली अपसेट होने लगी। वो जो कांड जब ये स्लोगनरिंग शुरुआत उसकी जब हुई, तो उसके बाद सुभाष सरकार जो बीजेपी के एमपी हैं पश्चिम बंगाल से और एमओएस एडुकेशन भी है, वो निकले, उन्होंने कोशिश की हाथ दिखाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक तरफ के आप लोग चुप हो जाइए, लेकिन उससे कुछ बात बनी नहीं। उसके बाद रेलवे मिनिस्टर खुद आ गए नीचे, उन्होंने ममता बनर्जी के साथ बातचीत भी की, उन्होंने भी हाथ जोड़े और क्राउड के तरफ जहां पे बीजेपी के नेतागण और दूसरे जो लोग बीजेपी के समर्थक बैठे थे उनकी तरफ के ऐसा ना करने के लिए एकदम दो बहुत एकदम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के बहुत ही हाई प्रोफाइल दो मंत्रियों ने ऐसा किया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ये नारेबाजी जो था वो रुक गया। ममता बनर्जी को स्टेज पे जाना था लेकिन वो नहीं गई। देखिए उनके उसके बाद ममता बनर्जी ने भाषण भी दिया, लेकिन वो स्टेज पे क्यों नहीं गई उस पे डायरेक्टली क्या जय श्री राम बोलने से उनको लगा कि और मतलब उनको रेडिक्यूल किया गया, ये उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो प्लेटफॉर्म पे ही वो तीन चेयर से वो और चीफ सेक्रेटरी के साथ वो वहीं पर ही बैठ गए और फ्लैग ऑफ भी जो था और स्पीच भी जो था वो उन्होंने वहीं से दिया। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी को गुस्सा आता है जब कोई भी जय श्री राम उनके सामने बोलता है और उसी कारण से वो ऊपर स्टेज में नहीं गए। तृणमूल का दावा है कि पहले भी 2021 में जब वहां पर भी एक ऐसा ही घटना घटा था जहां पे ममता बनर्जी ने साफ तरीके से कह दिया था कि ये जगह नहीं है जहां पे जय श्री राम के नारे लगे जाए, ये एक रिलीजियस नहीं एक ये एक नेशनल इवेंट है। तो तृणमूल का वही है कि वो ये सब करके बीजेपी ये सब करके राम को भी असम्मान पहुंचाते हैं और पीएम को भी उन्होंने किसी एक तरह से डिसऑनर भी किया है ये पूरा कांड करके।
तो ममता ने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के साथ अपनी संवेदना जरूर दिखाई लेकिन बीजेपी वर्कर्स के जय श्री राम वाले नारों से वो काफी बिफर गई। और ये पहला मौका नहीं है जब ममता ने पब्लिकली ऐसा किया हो, तो क्या वजह है कि ममता इन नारों से परेशान हो जाती हैं और बीजेपी को फिर मौका दे देती हैं? यह हमने पूछा पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को समझने वाले इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर जयंत घोषाल से।
आज जो हुई है इससे बहुत ज्यादा 2019 में हुई थी और 2021 में भी जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भी हर जगह जय श्री राम और असेंबली इलेक्शन 2021 के पहले वो भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था विक्टोरिया मेमोरियल में, उस समय भी जय श्री राम हुआ था। इसमें बीजेपी का फायदा और नुकसान क्या है ये मुझे पता नहीं है क्योंकि 2021 में जय श्री राम नारा लगाने के बाद भी तो ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से जीते थे और 2019 में जो नाराजगी ममता बनर्जी जब पहली बार हुई थी तो उनके गाड़ी के सामने आके जय श्री राम बोल रहे थे तो गाड़ी से उतर गए और बोले थे कि ऐसे नारा क्यों लगा रहे हैं, बहुत गुस्से किए थे। बाद में ममता बनर्जी को भी लगा कि ये बीजेपी का एक रणनीति है और ममता को नाराज करने के लिए उसको ये तरीका है। मैं कहूंगा ममता बनर्जी रैदर सोवर थी क्योंकि ममता बनर्जी नाराजगी कोई बात तो नहीं किए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं किए हैं। नाराजगी जो ममता का नाराजगी जो प्रकट किए हैं ये तो मीडिया का इंटरप्रिटेशन है क्योंकि उसके बॉडी लैंग्वेज देख के हम इंटरप्रिट कर रहे हैं, लेकिन उस समय चीफ सेक्रेटरी साइड में थे, रेल मिनिस्टर साइड में थे और रेल बोर्ड के ऑफिसर्स भी फुटेज में आप देखेंगे कि बार बार माना कर रहे थे ये जय श्री राम नारा ना लगाने के लिए। लेकिन राम का नाम आप पार्लियामेंट में जब राष्ट्रपति भाषण देते हैं तो बीजेपी के एमपी बोलते हैं जय श्री राम नारा, विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मान लीजिए भाषण दे रहे हैं उस समय तो जय श्री राम नारा नहीं लगाते हैं। तो राम बंगाली भी राम भक्त है, ऐसे नहीं है कि एंटी राम है, लेकिन जय श्री राम नारा ममता बनर्जी को, मैं ममता बनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी को लगता है कि जय श्री राम नारा इसको पॉलिटिकली बीजेपी यूज कर रहे हैं और तृणमूल के खिलाफ ममता को नाराज करने के लिए ये बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आज इसके बाद ममता बनर्जी पहले डायस में नहीं थे लेकिन बाद में जब प्रोग्राम शुरू हुई है और प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो वो प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात किए हैं। उस प्राइम मिनिस्टर को आना था, हेलीपैड में ममता बनर्जी रिसीव करने के लिए वेट कर रहे थे और जितने मिनिस्टर्स आए हैं यहाँ धर्मेंद्र प्रधान से लेके रेल मिनिस्टर सबको स्वागत राज्य सरकार ने किए हैं। सबसे बड़ी बात है जो शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता कभी एक साथ नहीं बैठते हैं आज तो शुभेंदु अधिकारी प्रोग्राम में थी, ममता उसके में नाराजगी नहीं किए हैं, तो रेदर मैं कहूंगा पहले से बेहतर हुआ है सेंटर स्टेट। और सेंटर 8,000 करोड़ मोदी जी कर रहे हैं और उनके लिए भी ममता बनर्जी ने बहुत स्वागत किए हैं, उनको लिए आभारी बोले हैं। और ये जो एक अलग केमिस्ट्री आज दिखाई दिया है प्राइम मिनिस्टर और ममता बनर्जी में, लेकिन स्टेट बीजेपी ये क्यों कर रहे हैं, इसके कारण है कि उनके पंचायत चुनाव आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहूंगा बीजेपी का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक हाथ से ताली नहीं बजता है, ममता बनर्जी को भी इसको इग्नोर करना चाहिए और बीजेपी को भी कम से कम सरकारी जब प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में भी ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें ममता बनर्जी का असम्मान होने से प्रधानमंत्री जी का भी असम्मान हो जाए।
जी ठीक है, तो बंगाल में आज नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक भी हुई थी, उसमें क्या हुआ, किन मसलों पर मंथन हुआ, ये जानने के लिए फिर से चलते हैं वापस सूर्याग्नि के पास।
ये जिन जिन राज्यों से गंगा गुजरती है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर ये बैठक हुई थी। तेजस्वी यादव भी थे, योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन को भी आना था, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर वो भी थे, पुष्कर सिंह धामी, इन सब में मिलकर ये बातचीत की कि गंगा को और साफ कैसे किया जाए, गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उस पे भी बातचीत की। कोलकाता में ही खुद आदि गंगा नाम, मतलब गंगा का एक पार्ट जो है वो शहर के बीच से जाता है, उसको आदि गंगा कहा जाता है, उसको कैसे नीट एंड क्लीन रखा जाए, इसी पूरे विषय पे कि कैसे पूरे गंगा के इस इकोसिस्टम को, गंगा के इर्द गिर्द जो भी जगह है उसको कैसे एकदम डीपोल्यूटेड रखा जाए, ताकि गंगा जो है, जो नमोमी गंगा प्रोजेक्ट है कि गंगा को बहुत साफ सुथरा रखना होगा, उसी को और ज्यादा बेटर इम्प्लीमेंटेशन के तहत ये किया गया।
शुक्रिया सूर्याग्नि रॉय, शुक्रिया जयंत घोषाल। विश्व कप फुटबॉल की सबसे सफल टीम का नाम ब्राजील है। 5 बार वर्ल्ड कप जीता है इसने और ब्राजील की इस कामयाबी में जिस खिलाड़ी का योगदान सबसे ज्यादा है, दुनिया उन्हें पेले के नाम से जानती है। उन्हीं पेले का निधन हो गया है, 82 साल के थे, पिछले कुछ वक्त से किडनी और प्रोस्टेट की बीमारियों से जूझ रहे थे। फुटबॉल की दुनिया में इस खबर से मातम पसरा है। भारत भी गमगीन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी नहीं रही। 100 बरस की हीराबा पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थीं, अस्पताल में भर्ती भी थीं, आज उनका देहांत हुआ। देश इस खबर का ठीक से शोक भी नहीं मना पाया था कि एक और बुरी खबर आई, क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उनकी जान बच गई और अभी सर्जरी बाकी है। तो आज की इन 3 बड़ी घटनाओं पर हमारे साथी जमशेद खबर सिद्दीकी की रिपोर्ट है, वो सुनते हैं।
साल के आखिरी दिन जब एक कैलेंडर दीवार से उतारा जाता है तो उस पर दर्ज तारीख का हर खाना किसी वाकये की गवाही होती है। गुजरी हुई तारीखें हमारी अच्छी बुरी यादों की दस्तखत बन जाती हैं। कल साल का आखिरी दिन और उससे ठीक पहले आज का दिन यानी 30 दिसंबर 2022 ऐसी 3 घटनाओं के लिए याद किया जाएगा जिसने दुनिया भर की तमाम आंखों को नम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा ने 100 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा तो खेल की दुनिया के पहले ग्लोबल सुपरस्टार्स में से एक फुटबॉलर पेले 82 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ गए। और इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम के शानदार खिलाड़ी ऋषभ पंत एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे पहले बात हीराबा की।
तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा।
साल 2015 में फेसबुक टाउन हॉल में मार्क जुकरबर्ग के साथ मंच साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को इस तरह याद किया था। पीएम मोदी की मां हीराबा ने अहमदाबाद में आज आखिरी सांस ली। उनका निधन अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में आज सुबह 3:30 बजे हुआ। हालांकि वो मंगलवार से अस्पताल में भर्ती थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। उनके निधन की खबर से पूरे देश में उदासी की लहर फैल गई। हम सब ने हीरा बा को उन तस्वीरों से जाना है जिनमें प्रधानमंत्री उनके पास बैठकर उनके पैरों को धोते हैं, कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं और कभी उनका हाथ पकड़कर शफकत से अपने सर पर रखते हैं। वो हीरा बा नहीं रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
आज के इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से, मठ की तरफ से माँ हीराबेन जो प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।
रक्षा मंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोगों ने हीरा बा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हीरा बा का अंतिम संस्कार गांधीनगर के शमशान घाट में किया गया। प्रधानमंत्री ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया और फिर उन्हें मुखाग्नि दी। उन भावुक तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में माँ के चले जाने का दर्द साफ दिखाई दिया और याद आया कि एक शायर ने कहा है, मेरी चोटिल आंख पर अपना पल्लू फूंक कर रखती थी, गर्भ निवाला मुझसे पहले खुद थोड़ा सा चखती थी। बचपन भूल गया हूं लेकिन धुंधला धुंधला याद मुझे, दुनिया की हर माँ की सूरत माँ जैसी ही लगती थी। आज की दूसरी अफसोसनाक घटना की खबर दुनिया को इंस्टाग्राम के एक पोस्ट से लगी। केली नेसिमेंटो, जो कि न सिर्फ ब्राजील के बल्कि दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में से एक पेले की बेटी हैं, उन्होंने एक पोस्ट में वी लव यू इनफाइनाइट लिखते हुए अपने पिता के निधन की जानकारी दी। ब्राजील्स माइटी किंग ऑफ ब्यूटीफुल गेम्स कहलाने वाले पेले ने ब्राजील को 3 बार फुटबॉल विश्व विजेता बनाया है और उन्हें इस शताब्दी का महानतम फुटबॉलर कहा गया और ब्राजील के खेल मंत्री भी रह चुके हैं वो। भारत को लेकर उनकी एक याद 25 सितंबर 1977 से बिछड़ी है कि वो दिन था जब पेले भारत की मशहूर टीम मोहन बागान के साथ एक फ्रेंडशिप मैच खेलने आए थे। उस दिन कोलकाता की सड़कें जाम हो गई थीं। फुटबॉल इतिहासकार नोवी कपाड़िया ने अपनी किताब बेयर फुट टू ब्रूट्स में इन पलों का जिक्र करते हुए लिखा है कि पेले एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जैसे पूरा शहर जाम हो गया था। लाखों लोगों की भीड़ उनके होटल के बाहर जमा रहती थी।
Kolkata, I love. I am here. Everybody knows because I love those people. I love Kolkata. I love the Indians. I love my friends.
पेले बीते साल से कैंसर से जूझ रहे थे और पिछले महीने ही अस्पताल में भर्ती थे। उनका जाना समूचे खेल जगत के लिए एक उदास करने वाला लम्हा है। आज की तीसरी घटना भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट की थी। हादसा दिल्ली से रुड़की जाते समय गुरुकुल नारसन इलाके में हुआ। उनकी कार अचानक तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा गई और कार में आग लग गई। पंत इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, हालांकि वो गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे। अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि गाड़ी चलाते वक्त उन्हें नींद की झपकी आ गई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। पुलिस जांच अधिकारी एसके सिंह।
सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका प्राथमिक उपचार किया गया डॉक्टरों की टीम के द्वारा, और एहतियातन और बेहतर उपचार के लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफर किया गया है। खुद ऋषभ ने बताया कि संभवतः उन्हें झपकी आ गई थी और इस कारण से ये दुर्घटना होने की संभावना उन्होंने जताई है।
डॉक्टरों ने बताया कि जब ऋषभ पंत को लाया गया तो वो गंभीर रूप से घायल थे। उनके पैर में सीरियस इंजरी हुई है जिसके लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी।
जो उनको चोटें थी वो मेनली है, 2-3 लेसेड वुंड्स हैं जो कि फोरहेड पे है उनको, यहाँ पे एक लेफ्ट आई के ऊपर है, और कोई हेड इंजरी का ऐसा कोई सेम सिम्टम बाद में नहीं निकला उनको। राइट नी में एक्सरे में हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली उनको। उनको जो मैंने एग्जामिन किया, हालांकि पेन काफ़ी था उनको, उन्होंने मुझे अच्छे से एग्जामिन नहीं करने दिया, तो उसमें लिगामेंटल प्रॉब्लम निकले है उनको।
साल के आखिरी दिन से पहले इन तीन घटनाओं ने इस तारीख को ब्लैक फ्राइडे में बदल दिया। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो।
शुक्रिया जमशेद। ऋषभ पंत के रोड एक्सीडेंट की खबर सुबह से ही लोगों को परेशान कर रही है। धू धू करके जलती उनकी मर्सिडीज कार की तस्वीरें, वीडियो काफी वायरल हैं, आपने देखे होंगे। अगर आपको याद हो तो ऐसी एक घटना कुछ वक्त पहले भी हुई थी। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये हाल फिलहाल में हुए रोड एक्सीडेंट से जुड़े कुछ हाई प्रोफाइल केस हैं, लेकिन देश में रोड एक्सीडेंट्स काफी आम हो गए हैं। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की एक रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में रोड एक्सीडेंट्स के 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे। इनमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। करीब 3.5 लाख लोग घायल हुए थे। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 2020 के मुकाबले 2021 के एक्सीडेंट के मामले जो थे वो 12.5% बढ़ गए थे। इसके साथ ही मौत के मामले भी करीब 17% बढ़े थे। तो ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। WHO की रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट से मरने वाला हर 10वां व्यक्ति भारतीय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कारण है भारत में रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ने का, जबकि सरकार का यह दावा है कि पहले के मुकाबले सड़कें बेहतर हुई हैं। यह हमने पूछा indiatoday.in में असिस्टेंट एडिटर वरुण सिंह से।
रोड की क्वालिटी ये डिसाइड नहीं करती है कि कितने एक्सीडेंट्स होंगे, बिकॉज एक्सीडेंट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ह्यूमन एरर। जैसे कि अगर हम बात करें तो ओवर स्पीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड पर स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, बट लोग वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हैं, तो ओवर स्पीड करते हैं, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें पीपल लूज देयर लाइव्स एंड ऑल। सेकेंडली, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है एक्सीडेंट्स का, ड्रिंक एंड ड्राइव। दिस इज़ वेरी कॉमन। अब लोग क्या करते हैं कि दे ड्रिंक एंड ड्राइव, सो वो ठीक से रोड पर ध्यान नहीं दे पाते, बिकॉज आप सब लोग जानते ही हैं कि ड्रिंक करके आदमी अपना संतुलन थोड़ा खो देता है। देन एक और रीज़न है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, वो है एग्जॉशन। अब मान लीजिए कि यू आर दी ओनली पर्सन ड्राइविंग, वैसे में होता क्या है कि आपने 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर एक स्ट्रेच पे चलाया, रोड चाहे जितना भी अच्छा हो लेकिन इतना लंबा अगर आप ड्राइव करते हैं तो एग्जॉशन तो होगा ही। उसमें ये हो जाता है कि कभी कभी आँख लग जाती है, और ये सेकेंड्स का खेल होता है, बस आपको एक झपकी आती है और पता चलता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया। एक और रीज़न है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, वो है लेन इनडिसिप्लिन। अब लोग क्या करते हैं कि वो लेन क्रिस क्रॉस करते हैं बिना इंडिकेटर दिए। इंडिकेटर इसलिए होता है ताकि पीछे वाले को पता चल जाए कि आप अब लेन चेंज करने वाले हैं। देन एक और मेजर रीज़न है एक्सीडेंट्स का, वो है ट्रैफिक लाइट वायलेशन। हम देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी में होते हैं, अगर रेड लाइट है तो वो रुकते नहीं है वहाँ पे, उस सिचुएशन में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये एक ऐसा रीज़न है जो कि शहरों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है।
लेकिन वरुण, सरकार इसे लेकर जो कर रही है वो ठीक है, पर्सनल लेवल पर हमें आपको वाहन चलाते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके?
देखिए, सबसे पहले तो ओवर स्पीडिंग नहीं। आप किसी भी रोड पर जाएं, किसी भी सिटी में किसी भी रोड पर जाएं, तो आप देखेंगे कि उस रोड पे बोर्ड्स होंगे कि भाई इतने स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना है, या आपका टू व्हीलर इतने स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना है, फोर व्हीलर इतने स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना है। तो सरकार जब ये स्पीड लिमिट लगाती है तो वो कुछ सोच के ही लगाती है, क्योंकि वो क्या पता वो भरी आबादी वाला क्षेत्र हो या फिर वहाँ पर स्कूल हो, टेम्पल हो, मार्केट हो, आपको पता नहीं है कब कौन रोड पर आ जाएगा, और अगर आप तेज़ चल रहे हैं तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो मैं ये सबसे पहले यही बोलूँगा कि ऑलवेज़ ड्राइव इन स्पीड लिमिट्स। देन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप सेलफोन पर बात ना करें, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी ड्राइविंग पर ही ध्यान दें। जब भी आप लेन चेंज कर रहे हैं तो इंडिकेटर देकर लेन चेंज करें, एंड ट्रैफिक लाइट्स ना वॉयलेट ना करें। आपने बहुत बार देखा होगा दिल्ली में भी, मुंबई में भी, और बड़े बड़े शहरों में, कि रात को 12 बजे के बाद होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो ही नहीं करते हैं। ये मैंने भी बहुत देखा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मिडनाइट के बाद ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक एकदम ख़त्म हो जाता है, लोग रोड पर होते हैं, तो अगर आप उस टाइम ये सोच के कि रोड खाली होगा, आप ट्रैफिक लाइट्स वॉयलेट करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल एंड अप इन अ मेजर एक्सीडेंट। सो ट्रैफिक लाइट्स का हमेशा यू शुड फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं, मैं ये भी बोलूँगा कि खासकर ये टू व्हीलर वालों को, आप कभी भी ना कार से एकदम सट के अपनी बाइक या अपना स्कूटर ना चलाएं। उससे होता क्या है कि कभी कभी आप ना अगर उस कार वाले ने अपना इंडिकेटर दे भी रखा है ना, तो आप देख नहीं पाएंगे, वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। सो थोड़ा सा अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी अपनी कार ड्राइव कर रहा है तो वो बिना मतलब की हॉकिंग ना करे। क्या पता कि अगर कोई टू व्हीलर वाला वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो डर जाए एकदम से, तो इसीलिए अननेसेसरी हॉकिंग ना करें।
बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका। और आज तक रेडियो भी आप लोगों को सलाह देता है कि जब भी आप सड़क पर उतरें, किसी वाहन के साथ या बिना वाहन के भी, तो प्लीज सावधानी बरतें। और अब 2022 तकनीक की नजर से कैसा रहा, कुछ नजीर से समझते हैं। एक अमेरिकन महिला का दाहिना कान पैदा होने के वक्त से ही छोटा था और निष्क्रिय भी था। अमेरिका की एक कंपनी 3D बायोथेरापूटिक्स ने उस महिला के लिए उसी के शरीर से सेल्स लेकर नया 3D प्रिंटेड कान बना दिया। इस नए 3D प्रिंटेड कान के टिश्यू सही शेप में बढ़ रहे हैं और इसका विकास लगातार हो रहा है। अमेरिका की एक और कंपनी है हाई प्राइस, इसने एक नया गैजेट बनाया वेनम गो। ये गैजेट आपके मसल पेन को चंद मिनटों में छूमंतर कर देता है। इसके अलावा एप्पल एक ऐसा फीचर लेकर आया जो एक्सीडेंट हो जाने पर या गुम हो जाने पर या किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट कर देगा। तो बड़ी दिलचस्प और बड़ी जरूरी चीजें इस साल हुई हैं। indiatoday.in के साइंस रिपोर्टर हैं शिबु त्रिपाठी, उनसे सुनते हैं कि इस साल साइंस के फील्ड की रिमार्केबल घटनाएं और उपलब्धियां उनके हिसाब से क्या रही।
देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस साल थी वो यही थी कि एक एस्ट्रॉइड को हमने पहली बार उसके करंट ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट किया, जो कि अभी तक हासिल नहीं हो पाया था। जो मिशन था डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट, उसने एक डिमॉर्फस नाम के एस्ट्रॉइड के मूनलेट को स्ट्राइक किया, लगभग 9 मिलियन किलोमीटर्स अवे है पृथ्वी से, और सक्सेसफुली उसका जो ऑर्बिट था उसको बदलने में कामयाब रहा। ये बेसिकली एक काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्नोलॉजी थी और ये एक प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम में आगे यूज़ होगा। अगर भविष्य में कोई एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आता है, जैसा कि डायनासोर्स के साथ हुआ, एक एस्ट्रॉइड ने आके सब कुछ तबाह कर दिया लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो, अगर ऐसा दोबारा से कुछ होता है तो ह्यूमैनिटी के पास, अर्थ के पास एक सिस्टम रहेगा जिससे हम अपने आप को उससे बचा सकें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज या साइंटिफिक अचीवमेंट्स इस साल में रहीं वो ये था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने साइंस ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए। हबल जो कि अब एज हो रहा है, लगभग 30 साल से काम कर रहा है, उसका एक कंपेनियन कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट तो नहीं है, ऐसा कंपेनियन जेम्स वेब टेलीस्कोप को पिछले साल क्रिसमस पे लॉन्च किया गया था। और इस साल उसने पहले इमेजेस, पहले डेटा, पहला एक्सोप्लैनेट का सर्वे कॉम्पोजिशन उनके बारे में बताया है। ये जो पिक्चर्स है ये इंफ्रारेड में है, और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप का ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि हम बिग बैंग को देख सकेंगे, बिग बैंग के बाद जो शुरुआती कुछ मिलियन ईयर्स में क्या हुआ था उसको देख सकेंगे। तो बेसिकली द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, उसको सॉल्व करने में जेम्स वेब टेलीस्कोप आगे आने वाले सालों में हमारी मदद करेगा। जो तीसरा सबसे बड़ा मिशन इस साल हुआ वो था आर्टिमिस 1 मिशन। आइडिया ये था कि ह्यूमैनिटी को दोबारा से चांद पे लेके जाया जाए। लगभग 50 साल का गैप रहा है अपोलो 17 और अभी के समय में, तो आर्टिमिस मिशन उस गैप को ख़त्म करने के लिए काम करेगा। और नासा ने सक्सेसफुली उस मिशन को लॉन्च किया, लगभग 25 दिन के अंदर वो मिशन पृथ्वी से चांद की तरफ गया, चांद की ऑर्बिट में गया और चांद से लगभग 60 से 70 हज़ार किलोमीटर और आगे गया, जो कि नासा का इनिशियल प्लान है कि हम मून से मार्स पे जाएंगे। तो उसको दिखाने में सक्सेसफुल रहा और अब आगे आने वाले सालों में ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स, जो क्रू होगा, वो इसी स्पेसक्राफ्ट पे बैठ के मून पे लैंड करेगा और वहाँ पे बेस तैयार करने का काम किया जाएगा।
और अब साइंस के बाद टेक की दुनिया का रुख करते हैं। मेरे साथ indiatoday.in के टेक रिपोर्टर मानस तिवारी हैं। तो भैया मानस, बताइए टेक की दुनिया ने इस साल क्या झंडे गाड़े।
वैसे देखो, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस साल। ऑफकोर्स एलॉन मस्क ने जो ट्विटर का टेक ओवर करा, दैट वाज अ बिग न्यूज़। उसने बहुत कुछ बदल दिया सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। बट मेरे लिए जो इस साल सबसे बड़ी एक जो न्यूज़ रही, या जो मैं कहूँगा एक चेंज रहा, वो था कि किस तरह से AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लोगों के पास पहुँची है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई टेक्नोलॉजी या नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सालों से ये है, एग्जिस्ट करता है, हम लोग यूज़ भी करते हैं कई बार जाने अनजाने में, हम सबके फ़ोन्स में, गैजेट्स में AI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट ये वाले इस साल में हुआ ये कि सब लोगों ने ना थोड़ा सा नोटिस ज़्यादा किया, स्पेशली जो कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स निकल कर आए। ChatGPT करके एक जो प्लेटफॉर्म था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जहाँ पर एक जो वेबसाइट है वो आपके इनपुट के बेसिस पर आपको कुछ भी टाइप करके दे सकती है, आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है, उसे बहुत लोगों ने यूज़ करा और बहुत सारी आईबॉल्स उसकी वजह से मिली। और दूसरा एक DALL-E करके प्लेटफॉर्म आया था जो आपके दिए हुए इनपुट्स के बेसिस के ऊपर कोई भी इमेज जो है वो जनरेट कर सकता है। और ऐसे ही कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स थे जो न्यूज़ में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनको यूज़ करा, तो एक कॉमन मैन तक AI की जो पावर है वो पहुंची। और ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स या फिर टेक्नोलॉजी वाले एंड पर है, बट इसके अलावा कुछ स्मार्टफोन्स में भी इस बार हमने AI का बहुत ज़बरदस्त यूज़ देखा। फॉर एग्जाम्पल वीवो का एक फोन आया था X80 Pro, जिसमें फोटोग्राफी जो है कम्प्लीटली जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के ऊपर फोकस्ड और AI का यूज करके ही जो है उसकी फोटोग्राफी कैमरा परफॉर्मेंस जो है उसे इम्प्रूव किया था। सिमिलरली पिक्सल के फोन हमने इस बार देखा, जो गूगल के पिक्सल फोन आए थे, बहुत ज्यादा जो उनकी प्रोसेसिंग केपेबिलिटीज थी वो AI ड्रिवन थी। तो यस, आई थिंक दिस वॉज अ बिग ईयर फॉर AI, कि जो AI है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा मेन स्ट्रीम हुआ है और आगे जाके आप देखोगे कि इसका और भी ज्यादा इस्तेमाल हमारी डे टू डे लाइफ में होने वाला है।
शुक्रिया शिबू, शुक्रिया मानस। तो 2022 के आखिरी दिन भर में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात नए साल में होगी, लेकिन उसके पहले कल साल का आखिरी तीन ताल जरूर सुनिएगा और संडे को आएगा स्टोरी बॉक्स। नई कहानी सुनकर बताइएगा कैसा लगा। radio@aajtak.com पर 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी आप अपने रिएक्शंस दे सकते हैं। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने, नितिन ठाकुर के साथ थे आप। अपना बहुत ख्याल रखिए, आज तक रेडियो सुनते रहिए और हैप्पी न्यू ईयर।